पोस्ट फेमिनिज्म की पोस्ट कर दी कुड़ी। पोस्ट शब्द बहुत मज़ेदार है अपने तीनों अर्थों में। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराय नर वह पाए बौराय में कनक पर श्लेष है। इसी तरह का श्लेष है पोस्ट भी। सबसे पहला पोस्ट तो वही जिसका संबंध कहीं न कहीं कनक से जुड़ता है, अफीम वाले कनक से नहीं स्वर्ण वाले कनक से। इस पोस्ट का अर्थ है पद, प्रतिष्ठा। यह पाए बौराय नर के सैकड़ों हाथ से होते देखे गए हैं। नर के बाद नारियां पद प्रतिष्ठा पाकर कितनी बौराई हैं इसके भी समाचार मिलते हैं, लेकिन कम। नया मुल्ला बहुत प्याज खाता है। नया नया आजाद हुआ प्राणी पूरे उत्साह से त्रिगुणे दायित्व भी निभाता है, घर बाहर दोनों संभालते हुए बच्चे भी पाल लेने का तिहरा दायित्व। घूस लेते हुए कोई महिला अफसर जल्दी नहीं देखी जाती। सुबह जल्दी जल्दी 4-6 टिफिन पैक कर चार्टर्ड बसों में गुरु ग्रंथ साहब वगैरह पढ़ती कोष्टक में, यानी बिना एक क्षण गंवाए बस में बैठे बैठे भी परलोक में अच्छी सीट का रिजर्वेशन कराती हुई कोष्टक बंद। महिलाएं समय पर दफ्तर भी आ जाती हैं। ममतामयी होने के बावजूद पैरवियां ज़्यादा नहीं सुनती। घोटालों में इक्का दुक्का महिला मुख्यमंत्रियों का नाम आया भी है तो इस अपवाद को अपवाद स्वरूप ही लें तो बेहतर। आंकड़े बताते हैं कि औरतें छवि मटिया मेट करने वाले काम जल्दी नहीं करती। इतनी व्यावहारिकता उनको बचपन से गुट्टी में पिला दी जाती है कि कीचड़ से बचकर चलो। काजल आंखों के लिए ठीक है, पर काजल की कोठरी में मुंह घुसाल देना आंखों के लिए ठीक है न उजले दुपट्टे के लिए। कुछ करके घर तो लौटना ही है, गड़बड़ करोगी और बच्चा आंचल झटक कर पूछेगा, माँ ये क्या किया, ये लोग क्या कह रहे हैं, तो क्या जवाब दोगी। सबसे मुश्किल तो बच्चों की अदालत होती है। इसी से संबंध जुड़ता है उस परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स का जो औरतों में भरपूर होता है। जिसके जन्म से ही सबके चेहरे उतर जाएं, उसका कदम कदम पर अपनी अच्छाई तेजस्विता और बकत सिद्ध तो करनी ही पड़ती है। प्रेम और प्रतिष्ठा पाने के जतन तो करने ही होते हैं। पोस्ट श्लेष का दूसरा अर्थ है चिट्ठी डाक में डाल आना है। यह काम भी औरतें बहुत देर से कर पाई, पर जब किया ऐसे सैकड़ों की तादाद में लिख लिख भेजी पाती कि परदेसी पिया तो पढ़ पढ़ कर उलट ही गए। संपादक आलोचक सहयोगी लेखक भी अचकचा कर रह गए। इतनी आग इतनी उष्मा संचित थी भीतर, इससे तो लिख लोढ़ा पर पत्थर ही ठीक था। लोढ़े की चोट शब्दों की चोट से तो कमतर होती ही है। मेरी एक मौसी तो अपने बचपन में अपनी तकलीफें लिख लिख कर सीधे भगवान को ही पुष्ट कराती थी। माई या भाई को धारावाहिक चिट्ठियाँ लिखती स्त्रियाँ ईमेल के इस युग में भी आपको घर घर मिल जाएंगी। ये चिट्ठियाँ डाक में नहीं डाली जाएं तो भी लिखी जरूर जाती हैं। पोस्ट के तीसरे अर्थ उत्तर में सबसे ज़्यादा पेंच है। उत्तर आधुनिकता, उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर संरचनावाद और अब उत्तर स्त्रीवाद। मूल प्रश्नों के समीचीन उत्तर ढूंढे बिना ही प्रश्नों के पार कूद जाना इक्कट दुक्कट नामक देहाती खेल का उत्तर आधुनिक प्रकार है। तर्कनिष्ठा, सामाजिक न्याय, आर्थिक वैषम्य का नाश और धर्मनिरपेक्षता आदि आदर्श लेकर आधुनिकता 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हमारे घर उत्तर आधुनिकता आई। 20वीं सदी के चलंत की बेला में फ्रेंच बियर पीकर औपनिषदिक मुद्रा लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कुरीति। प्रश्नों के पार चला जाना कोई बुरी बात नहीं है, यदि इसे प्रश्नों से टकराते चले जाने से उपजी तात्कालिक थकान माने, पर उलझे बिना ही मलुआए और साफ गिर पड़े, आधुनिक हुए बिना ही उत्तर आधुनिक होने का ढोंग करने लगे, यह तो खूब रही। भूखे पेट न हो ही भजन न हो ही गोपाला, भूल गए क्या। पश्चिम स्त्रियों के यौनाधारित शोषण का स्कोप बहुत कम हुआ है, अपने आप नहीं कम हो गया, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसीलिए अब जर्मन ग्रियर, एड्रिन रिच आदि पश्चिम स्त्रीवादियों का ध्यान तीसरी दुनिया की उन स्त्रियों पर है जो अब तक जमीनी संघर्ष से जुड़ी हैं। यह है बहनापे का जोर। स्त्री विमर्श कई रंगों में उपस्थित है। भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी आंदोलन विचारधारा के विरुद्ध नहीं होता। मोटर ड्राइव वहीं से आती है, स्नायुतंत्र वहीं होते हैं, पर स्नायुतंत्रिका सजग होकर भी कर क्या लेगी जब हाथ पांव नहीं हिलेंगे या हिलने से इनकार करेंगे। एक तरह का अन्योन्याश्रम इसमें है। पक्षाघात के खतरे भी हैं अगर दोनों का सही समायोजन नहीं हो पाए। आंदोलन शब्द के दो अर्थ हैं ही, दोनों कहीं ना कहीं जुड़ते भी हैं। किसी घटना के प्रभाव में पहले तो मन आंदोलित होता है, भीतर तरंग उठती है, एक विचार तरंग, फिर करवटें लेती हुई एक हिलोर बन जाती है। महाभारत का एक पात्र है बर्बरीक, धड़ से उसका सिर अलग हो गया है, फिर भी एक डाल पर बैठा लगातार युद्ध पर सटीक टिप्पणियां दिए जाता है। मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस की कोटि का एक बुद्धिजीवी एक लंबे समय तक हमारे संक्रमणशील समाज का सच रहा। पितृसत्तात्मक भाषण धर्मिता के भी अनुकूल बैठता था यह कि हाथ पांव हिलने लायक नहीं हो तो भी ऊंची डाल पर बैठकर या ऊंची ड्योढ़ी दालान पर आसन और हुक्का जमाए डांट फटकार साधे चलो। भाषण धर्मिता के खिलाफ संवाद धर्मिता का आंदोलन है स्त्रीवाद, एक्शन बेस्ड रिसर्च का नारा जिसने दिया। औरतें काम करते करते भी गा बतिया सकती हैं, वे एक साथ बहुत तरह के काम कर सकती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक शोधों का निष्कर्ष है उनका दाहिने और बायां मस्तिष्क एक साथ काम कर सकता है, और इसी से उनका भाव बुद्धि कोश, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज्यादा होता है। शब्दों का मर्म अनुकूलित करने का कौशल पर दुख कातरता आदि गुण यही इमोशनल इंटेलिजेंस घोषित करता है। दुनिया के हर देश का ओजस्वी लोक साहित्य साथ साथ कपड़े पछीड़ती पालने डुलाती धान कूटती चक्की चलाती औरतों का अवदान है, तनाव और ऊब भी अनाज के साथ कूट फटक देने की समवेत कोशिश का अवदान। वर्ण नस्ल राष्ट्रीयता सापेक्ष कुछ विशिष्ट समस्याओं के बावजूद विश्व भर की स्त्रियां भगनी भाव से जुड़ी इसलिए हैं कि दैहिक मानसिक और आर्थिक शोषण से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं इनकी साझा हैं और इनकी मानसिक बनावट भी मिलती जुलती है। स्त्री विमर्श से जुड़ी हर स्त्री मुख्यतः एक एक्टिविस्ट ही है, क्योंकि समस्याएं मिल बांटने का सहज घरेलू तरीका ही आज अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पा गया है। एक सखी तत्व हर स्त्री में नैसर्गिक होता है, विमर्श इसे बस धार ही देता है। एक स्त्री दूसरी की नैसर्गिक सखी तो होती ही है, सब परितप्त जनों और प्रकृति तक की अनन्य सखा भी वह होती है। चिपको आंदोलन इसका भास्वर प्रमाण है। छठे दशक में लिबरल फेमिनिस्टों का परमाणविक शस्त्र विरोध और अब के स्त्रीवाद का युद्ध और दंगा विरोधी विरोध भी इसी के प्रमाण है। संविधान तो मुक्ति के बाद ही बनते हैं, हाँ मैनिफेस्टो पहले बन जाते हैं, पर मैनिफेस्टो भी संविधान की तरह लिखित अलिखित दोनों होते हैं। हमारे यहाँ स्त्री विमर्श का गांधीवादी मॉडल पनप रहा है, अहिंसात्मक प्रतिरोध और पिकेटिंग का मॉडल, और इसका ध्येय है यौन शोषण युक्त एक इगैलिटेरियन समाज की स्थापना, जहाँ वर्गगत वर्णगत नस्लगत शोषण का कोई भी स्कोप न छूटे। स्त्री आंदोलन का उद्देश्य इस बद्धमूल धारणा का निराकरण है कि वे एक लदा हुआ गर्भ मात्र हैं, और इस चेतना का विकास कि यौन सुख हो, सत्ता सुख हो, या किसी नैतिक आध्यात्मिक तृप्ति का बिंद, स्त्रियों का पुरुषों पर अवलंबन बस इतना है कि जितना पुरुषों का स्त्रियों पर, दोनों अलग अलग भी अपने आप में पूर्ण और आत्मनिर्भर रहें यह असंभव नहीं। पूरा लेस्बियन कल्ट इसका ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी बहुत जरूरी होगा कि लेस्बियनिज्म अपने आप में दैहिक तादात्म्य से ऊपर की चीज है। इसका संबंध विश्व भर की महिलाओं के अंतश्चेतनागत साहचर्य से है। पुरुषों में इस चेतना का विकास की दैहिक मानसिक और भाविक संरचना स्त्रियों की अलग और विशिष्ट है, लेकिन और तरह की होने से उन्हें दोहन का शिकार नहीं बना देना चाहिए। जो प्राकृतिक विशिष्टताएं हैं शर्मनाक वे नहीं, शर्मनाक आरोपित सामाजिक मानदंड हैं जो दोहरे हैं और जिन पर पुनर्विचार होना चाहिए ताकि विकास के अवसर समान मिल सकें। निरूपण प्रक्षेपण और विलोपन के तिहरे षड्यंत्र स्त्री के खिलाफ लगातार कारगर हैं, जिनमें निस्तार मिलना ही चाहिए और कुछ संदर्भों में तो कानूनी अवलंब भी जरूरी है। जहां कानून है भी उनका सख्ती से लागू कराया जाना बेहद जरूरी है। विशिष्ट कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं स्त्री भ्रूण हत्या का मुद्दा, पैतृक संपत्ति, मैट्रिमोनियल संपत्ति, अलमनी आदि में बराबरी के हिस्से का मुद्दा, बलात्कार के शिष्ट भंग का मुद्दा, घरेलू हिंसा और गाली गलौज के निराकरण का मुद्दा, बराबरी के श्रम पर बराबरी के वेतन का मुद्दा, देह व्यापार और ट्रैफिकिंग पर अविलंब रोक, इसके अलावा कुछ मौलिक सुविधाएं भी मुहैया कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें मुख्य है कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में उत्कृष्ट क्रेश और डे केयर इंटर की बहुतायत, अधिकाधिक विमेंस हॉस्टल जहाँ बच्चों के साथ भी अकेली स्त्री गरिमा में सुरक्षित जीवन जी सके, पढ़ लिख नहीं पाई या रोजगार ढूंढ नहीं पाई स्त्रियों का समुचित कार्य प्रशिक्षण जिससे उन्हें अपने गांव पांव पर खड़ी होने में सुविधा हो, साफ सुथरे और सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था, बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं, करने हैं तो कब और उन्हें कैसे किन की मदद से पालना है, इन सब का निर्णय स्त्रियों के हाथ सौंपने की व्यवस्था, पुरुष और स्त्री दोनों के माँ बाप भाई बहन दोस्त और अन्य परिचितों के साथ एक जैसा सम्मानजनक व्यवहार, अपने ढंग से खर्च करने की छूट, इन सब के अलावा एक नया स्त्रीवादी मूल्यांकन आर्ष ग्रंथों क्लासिक्स रीति रिवाजों शास्त्रीय और लोक कला के स्तंभों साहित्य दर्शन इतिहास मिथक अर्थशास्त्र यहाँ तक कि भूगोल आदि मान्यताओं का भी। स्त्री के शोषण की को प्रकृति पर्यावरण दोहन के समकक्ष देखकर पर्यावरण सुरक्षा को नया मोड़ देने की कोशिश, युद्ध दंगा विस्थापन आदि की विभीषिका के शिकार औरतों का विशिष्ट समायोजन, यौन कर्मियों के बच्चों के लिए हर अच्छे स्कूल में हॉस्टल की सुविधा, मध्यवर्ग की स्त्रियां एक हाइफन है तथाकथित उच्चवर्गीय और निम्न वर्गीय महिलाओं को जोड़े रखने वाला। महिलाओं का अपना वर्ग क्या होता है? आंकड़े बताते हैं कि विश्व की 2% संपत्ति भी महिलाओं के नाम नहीं, पिता पति या बेटे के धन से कोई धनी नहीं हो जाता, प्रतिबिंबित वैभव ही रहता है। इस दृष्टि से देखा जाए कि विश्व की अधिकांश स्त्रियां सर्वहारा हैं और खग जाने खगही की भाषा का तर्क उन्हें आजीवन जोड़े रखता है। धनी हो या गरीब, गोरी या काली, सवर्ण या दलित, मारपीट गाली गलौज यौन शोषण और अश्लील जुमले कौन सी स्त्री नहीं झेलती, बताएं आप? किसके कामकाज आत्मीय संबंधों या कला साहित्य का श्रेष्ठ मूल्यांकन हो पाता है? किस वर्ग वर्ण नस्ल की महिलाओं को मिलते हैं विकास के सामान्य अवसर? लेकिन हाँ, रोटी का सवाल तो सबसे बड़ा है ही, जो जितना गरीब और पिछड़ा है उसकी समस्याएं उतनी ही गंभीर हैं। दलित और अल्पसंख्यक स्त्रियों की अदरिंग दोहरी है, इसमें कोई शक नहीं। इस संदर्भ में हमें तमिल दलित कवयित्री स्वरूपा रानी की पंक्ति हमेशा याद रखनी चाहिए, घर में पुरुष अहंकार एक तमाचा जड़ता है तो गली में जाति अहंकार दूसरा। राजनीतिक एकजुटता की कुछ शर्तें होती हैं। दलितों के त्रास अनंत थे या हैं, पर पर्दा प्रथा और घरेलू कैद उन्हें नहीं झेलनी पड़ी। सड़क राजनीति का आंगन है, जो धरती बिछाकर आसमान उड़ेगा किसी अम्बेडकर किसी नामदेव ढसाल किसी दया पवार किसी नारायण सुर्वे के लिए आसान होगा। उस समूह में राजनीतिक एकजुटता जगाना, उसे एक परचम के नीचे करना या संविधान में ही सही उसे आरक्षण आदि कुछ सुविधाएं मुहैया करा पाना। स्त्रियों को राजनीति में अम्बेडकर जितना दबंग कोई नेता भी नहीं मिला। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती थी और कोयल को ढेला मारना उसकी नकल उतारना गली के बच्चे तक अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। जब तक भारतीय कोकिलाओं ने अबाबील के डैने और चील निगाहें पाई अपने अनाम दुखों के ठोस मनोसामाजिक कारण ढूंढे, जब तक नीरभरी दुख की बदली ने अपनी आध्यात्मिक व अस्तित्वगत बेचैनियों या दुखों का असल उत्स पहचाना, जब तक श्रृंखला की कड़ियां खुली कुछ देर तो हो ही चली थी। एक बहुत बड़ा जाल था जिसकी अलग अलग छोरों पर फंसी पड़ी चिड़िया अपने पंख अलग अलग तो जरूर फड़फड़ा रही थी, पर यह उन्हें सूझ नहीं रहा था कि मुक्ति का मार्ग बस एकजुटता है। अलग अलग पंख फड़फड़ाने से अच्छा है एकजुट होकर जाल समेत उड़ जाना। कभी कोई तो पहाड़ खोदेगा, खोदे पहाड़ के नीचे कोई तो राजनीतिक चूहिया मिलेगी जो जाल को उतर देगी। सड़क राजनीति का आंगन है तो कैद पढ़ने लिखने की ठीक ठाक जगह, घर में बैठकर पढ़ना पूर्ववर्ती लेखन परंपरा से सजग मना संवाद कलम को धार देने वाली बेहद जरूरी चीज है। दलित लेखकों को अपने लेखन को धार देने का अवसर कम मिला, स्त्रियों से भी कम। इसलिए हो सकता है कि दलित साहित्य में शैलीगत सौष्ठव कम हो, पर उससे क्या, इसकी कयास ही उसकी शक्ति उसकी ऊर्जा है। कुछ फल बच्चों कच्चे ही अच्छे लगते हैं, खटतुरुस चीजों का एक अलग रस होता है। हर चीज पकी पकाई और सांचे में ढली हुई ही क्यों हो, सात्विक आक्रोश का एक अलग गैरिक बाना होता है। नामदेव ढसाल की कविताओं में गाली भी शेक्सपियर की गालियों जैसी पैनी और धारदार लगती है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श कई रंगों में उपस्थित है, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं परोक्ष, कहीं आड़ा, कहीं तिरछा। पुरुष स्त्रीवादियों की भी एक अलग कोटि है, पर स्त्रियों का एक विशिष्ट अनुभूति मंडल होता है। इन कोष्ठक में बलात्कार, यौन शोषण, घर का न घाट का होने की स्थिति, भावहीन यांत्रिक संभोग, गर्भधारण, दूध पिलाना, अंतहीन घरेलू कैद आदि कोष्ठक बंद। पुरुष लेखक जिसकी सूक्ष्म तरंगे कोष्ठक में गहनतम परकाया प्रवेश के बावजूद कोष्ठक बंद पूरी तो नहीं पकड़ सकते। जो पुरुष झेलते हैं बतौर एक नागरिक, वो तो अब की स्थितियां भी झेलती ही हैं, सड़क का यथार्थ, इसके अलावा यह सब। साहित्य में सब छन रहा है और एक अलग ही भाषा में, क्योंकि स्त्रियों का अनुभूति मंडल ही अलग नहीं होता, उनकी भाषा का मिजाज भी कुछ अलग होता है, उसके मनोसामाजिक गढ़ंत अलग होते हैं। इतिहास, मिथक और आत्मकथा के सम्मिश्रण से कथा साहित्य में नया स्पेस सृजित हो रहा है। एक और नई घटना घटने रही है। घर गृहस्थी, नौकरी और बच्चों की तिहरी जिम्मेदारी और अधूरी अतृप्त प्रेम के तनाव के बीच एक स्त्री दूसरी का संबोध्य बन रही है और एक नए रस का परिपाक हो रहा है, कविता में और कहानी में भी। इस नए रस में वात्सल्य, करुणा और शांत सब अपने उदात्ततम रूप में समाविष्ट दिखते हैं, बच्चों में और दूसरों औरतों में। एक औरत विश्वास, निष्ठा और सहानुभूति का परिविस्तार सहज ही ढूंढ लेती है। ये स्पंदन कुछ ऐसे हैं जो उसे पुरुष के संसर्ग में बहुधा नहीं मिलते, तो वह मीरा महादेवी की सी मन स्थिति में आकाश तत्व की ओर मुड़ जाती है, या लेस्बियन रचनाकारों की तरह आत्मनिर्भर घेरों के संधान में, या फिर जीवन के जंजाल के बीच भी एक प्रच्छन्न पारस्परिकता में प्रेम, आनंद और शांति की यूटोपिया का क्लांत अस्तित्ववादी संधान इधर हाशिए पर चला गया है। अधिकार हनन के विरुद्ध सदा व्यंग भी भाषा और स्थितियों के साथ एक आत्मविश्वास भरी छेड़छाड़ में तब्दील हो गया है। लोकगीतों की सी परिहास वृत्ति, एक महीन सा ह्यूमर भी इधर की स्त्रीवादी रचनाओं की एक बड़ी उपलब्धि है। आत्मान्वेषण का हर्ष इतना घना है कि श्रेष्ठ रचनाकार भाषा से होली खेलती दिखती है। समर्थ हिंदी लेखिकाएं अच्छी तरह समझती हैं कि भावों की शुद्धता की रूमानी अवधारणा मनुष्य के दिमाग की क्लिष्ट बनावट के प्रतिकूल पड़ती है। प्रेम में पड़ा आदमी दिन रात सिर्फ प्रेम के बारे में ही नहीं सोचता। सच्चे से सच्चे प्रेमी को भी कभी पैसे की चिंता सता सकती है, तो कभी दुनिया के अन्य क्रूर यथार्थों की। इसलिए उसके मन स्थिति का यथेष्ट चित्रण केंद्रीय और उपकेंद्रीय दोनों संवेगों की बहुआयामी प्रस्तुति से ही संभव है। बहुत दिनों तक महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी कविता की इकलौती बेटी रही, सात भाइयों के अकेली चंपा, जिन्होंने प्रखर स्त्रीवादी तेज से अपना अकेलापन झेला भी। पंथ रटने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, शिलवृति निर्माण उन्मत, ये अमरता नापने पद, बांध लेंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, लोनसम लॉर्क इंजर्न ड्रॉ स्प्रिंग, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीर और वात्सल्य को महादेवी जी की करुणा से अलग एक पहचान दी, यह उनका बड़ा अवदान है। भाव निक्षेप की दृष्टि से और शब्द चयन के निकष पर भी स्त्री कविता का परिवृत्त बड़ा करने का श्रेय उन्हें जाता है। काव्य भाषा के जकड़न खोलने, उसे बातचीत की भाषा के करीब लाने में उनकी कविताओं की ऐतिहासिक भूमिका है। शाहबाद उत्तर गोधुली में संधि प्रकाश रागों के अवसाद के साथ जो स्त्री स्वर उभरे, उनमें से कुछ पर आरोप लगा कि वे अपने परिवेश से कटे हुए हैं, आत्मदया से और कच्चे आक्रोश से भरी हैं उनकी कविताएं। कुछ आलोचकों ने फरियाद की कोई लय नहीं है कहकर इन्हें समंजित करना भी चाहा तो दया भाव से। परिणामात्मक स्त्री कविता अपने विशिष्ट स्त्रीवादी रंग में परवान चढ़ी है। पिछले ही दशक जब एक साथ कई स्त्री स्वर उभर कर आए हैं जो सरगम के सात सुरों की तरह अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, किसी का किसी पर प्रभाव नहीं है, पर्सनल इज पॉलिटिकल का दर्शन सबके सिर चढ़कर बोलता है, पर मैं की चौहद्दी सामाजिक ही नहीं परिणामात्मक निकष पर भी सब स्त्री कवियों के यहाँ बड़ी है। मैं और हम का तो फर्क ही मिट गया है, यहाँ उनका मैं सर्वसमावेशी हो गया है।